عباده الذين اصطفى. أما بعد، بہت ہی ضروری اور بہت مفید باتیں آپ ہمارے سامنے آ رہی تھی. اصل ضرورت کا ہی احساس کرنا ہے میرے دوست. امت کے احوال مختلف طریقوں سے سامنے آتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. دعوت کے ذمہ داروں کے جو اسفار ہوتے ہیں ان سفروں سے بھی بہت کچھ روداد ملتی ہے، اور دوسرے ذرائع سے بھی، اپنے اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بھی بہت سی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، بہت سی باتیں نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے، شاید نہیں معلوم ہوتا، بہت بڑا حصہ نہیں معلوم ہوتا. ابھی اندر کے جو احوال ہیں، جیسے یہ احوال سنا رہے تھے مولانا، یہ کہاں میڈیا میں آتے ہیں؟ یہ تو میڈیا میں نہیں آتے، یہ کون بتانے والا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جو کام کرتے تھے، علماء کو وہ کام کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے، علماء کو وہ کام کرنا ہے. چونکہ وارث ہیں، وارث کو تو سب سنبھالنا پڑتا ہے، مورث کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں. آپ نے علم کا بھی کیا، آپ نے دعوت کا بھی کیا، آپ نے تربیت کا بھی کیا، آپ نے دعوت کے تقاضوں کے، دعوت کے کام میں آگے چل کر بہت تقاضے آئے، ان سب کو نبھایا. دعوت میں جب دعوت دی جاتی ہے تو بہت تقاضے آ جاتے ہیں، بہت شاخیں بنتی ہیں اس کی، کام بہت نکلتے ہیں اس میں، وہ سارے آپ نے کیے. نو مسلمین آتے تھے دعوت سے ہی تو آتے تھے، ان کی تربیت کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو سمجھانا آپ کرتے تھے. ارتداد کا فتنہ، مرتد ہونے والے واقعات پیش آ گئے، مدعیان نبوت پیش آ گئے، آپ نے سنبھالا، کیونکہ وہ دعوت کا ہی حصہ تھا. وہ دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس کا انکار کر دیا، اس کو لگ کے آ گئی چیز، پھر آپ نے سنبھالا اس کو، آپ کے بعد صدیق اکبر نے سنبھالا. سنبھالنا پڑتا ہے، حقوق کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جانوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، انتظام قائم کرنا پڑتا ہے. دعوت کو قبول کرنے والا مجمع تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بیش پھر نہیں آ رہی، کیا کروں، نہیں آ رہا تو میں کیا کروں، تھوڑے سے تو ہیں یار، نہیں آنے کا کیا، باہر بیٹھے تو نہیں آ رہا، یہاں اتنے تو ہیں، یہاں سامنے تو ہیں، پلر تک تو جاتی ہے بس، کیسے باریک آئی تو کیا، موٹی آئی تو کیا، باریک نہیں آنا کیا بات ہے. جتنی آواز میں یہاں پہ مسجدوں میں تراویح ہوتی نا، نماز ہوتی نا، اتنی آواز اگر ہمارے پاس آئی نا تو لڑائیاں ہو جاتی. ارے کیا ہے، کانا پھاڑ دے رہے ہیں، کوئی سننے کا عادی نہیں، اتنے زور سے کوئی بات، اٹھ کے چلے جاتی پوری مسجد، نماز چھوڑ دیتے لوگ، کوئی طریقہ ہے بولتے. یہاں پہ آواز بہت ہونے کا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. آواز آنے کا ہے اور آرام سے آنے کا ہے، آدمی کو اذیت نہیں ہونا ہے، تکلیف نہیں ہونے کا ہے، سافٹ انداز میں، نرم انداز میں بات پہنچ جانا ہے کان میں، بہت زیادہ چلانے کا نہیں رہنے کا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، وارثین نبوت کو، وارثین نبوت کو، ورثۃ الانبیاء کو، وہ سارے کام کرنے ہوں گے. اور ہمارے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں یہ، ان کو کیا کیا ذمہ داریاں پیش آتی ہیں. تو اس لیے جیسا کہ ابھی کہا جا رہا تھا میرے بھائیوں، اپنے دینی مدارس کی جو مشغولیت ہے یا مساجد کی جو مشغولیت ہے، اس ترتیب میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہمارا کچھ انداز ایسا ہوا ہے، چھوٹے تھے زیادہ تر تو غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، الا ماشاءاللہ بعض لوگ ہی ہیں جو امیر گھروں سے تعلق رکھتے رہے. شور ہم کو تھا نہیں، استاد لے آ کے مدرسے میں، ماں باپ لے آ کے مدرسے میں بٹھا دیے، مدرسے میں ہماری تعلیم ہو گئی، अब हमारे जहन में यही आ गया कि अब हम चूंकि पढ़े हैं और हमने अपने असातिज़ा को जो काम करते हुए देखा है वही करना है, वो लोग या तो नमाज़ पढ़ाते थे या जुम्मा पढ़ाते थे या मदरसे में पढ़ाते थे, वही काम अपना भी है, यही हमारे जहनों में आ गई बात। इसके अलावा भी जिम्मेदारी है या नहीं है, ये हमारे जहनों से अवझल हो गया मसला। उनके अपने हालात हैं हमारे बड़ों के, उनकी अपनी मजबूरियाँ रही हैं, उनके अपने काम की तकसीम रही है, बहुत से मसाइल उनके साथ रहे हैं, लेकिन हमारे उनके ऊपर कयास करना सही नहीं रहा, कयास माल फारिक हो गया ये। तो इस वजह से ये जो हमारा सेटअप है ये सही नहीं है आजकल, और इससे हमें भी नुकसान हो रहा है, उम्मत को भी नुकसान हो रहा है। इसको निभाना है, इसको संभालना है, असल क़ियादत करना है, लीड करना है उम्मत को, उम्मत के बड़े बन के चलना है, साथ लेना है उम्मत को, पूरे काम जो उनके हैं वो करना है। अब जाहिर है कि पूरे काम की एक लंबी फहरिस्त है, दो तीन काम नहीं होते, वो बहुत लंबी फहरिस्त है। और उलमाए किराम को पता ही है, जब मसला इज्तमाईयत का आएगा तो उसके कितने मसाइल होंगे। जो मसला इनफरादियत के हैं वो भी जिम्मेदारियाँ हैं, जो इज्तमाही तकाजे हैं वो भी सारे के सारे हैं इसके अंदर, वो लेके चलना क्या है हमको। इसीलिए हज़रत मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर तबसरा करते हुए बहुत किनारे के साथ चले जाते थे, मगर चूँकि खुला बोलना मुनासिब नहीं दिखता और अच्छा नहीं, पसंद नहीं आता, किसी को तकलीफ़ भी हो सकती है, बल्कि ज़रा सा साइड से बोलते थे। वो फरमाया करते थे कि भाई आजकल हमारा हाल जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है, मसाजिद में हो या मदारिस में, जहाँ पे भी हम काम करते हैं। और मैं हमारी हालत ये है कि एक आदमी को सवारी के वास्ते घोड़ा होना था, जा रहा था पैदल, जाता पैदल जाते 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 थक गया, थक के अल्लाह मियाँ की तरफ मुतवज्जे हो गया, कहने लगे अल्लाह मियाँ घोड़ी दे दे, अल्लाह मियाँ घोड़ा दे दे, अल्लाह मियाँ सवारी दे दे, अल्लाह मियाँ सवारी दे दे, अल्लाह मियाँ दे ही दे, अब तो देना ही होगा, मैं इसके बगैर जाऊँगा ही नहीं आगे, यहीं रह जाऊँगा, मर जाऊँगा मगर हटूँगा नहीं यहाँ से, मेरे को सवारी दे, ऐसा लग गया अल्लाह मियाँ। इत्तेफाक के बाद बहुत देर तक दुआ करता रहा तो उधर से एक फौजी आ रहा था, वो फौजी घोड़ी पे था, उसकी घोड़ी हामिला थी, वो घोड़ी को बच्चा हुआ। अब फौजी आदमी देखा कि सफ़र में घोड़ी को बच्चा हो गया, बच्चा तो चलने के काबिल नहीं है, अब कोई होना है या बच्चे को लेके चलने वाला, तो इधर देखा उधर देखा ये खड़ा हुआ था मौलवी साहब दुआ कर लेते हुए, मुझे घोड़ी होना घोड़ा होना बोल के। तो उसने वो तो फौजी आदमी बेगारे में उसने बुलाया, इधर उठा इसको, बोला मैंने नहीं उठाता नहीं लगाऊँ, वो फौजी आदमी है मरता क्या ना करता। उसने वो घोड़ी का बच्चा जो है ना घोड़े का बच्चा सर पे रख लिया, बोले लेके चल इसको, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना वहाँ पे ले आके छोड़ इसको। तो अब वो जाते जाते रास्ते में बोल रहा, या अल्लाह मियाँ मैं नीचे मंगा था ऊपर नहीं मंगा था, मैं नीचे मंगा था ऊपर नहीं मंगा था, इस पर चढ़ के मेरे को जाना था, ये तो मेरे सर पे सवार हो गई, मस्जिद की कमेटी मौलवी पे सवार, मदरसों की कमेटी मौलवी पे सवार, जो इनके नीचे होना था वो उनके ऊपर है। काना ममलूकी फ़ाज़हा मालिकी इन हाज़ा मिन आजीब ज़मन, जो ममलूक वो मालिक हो गया, जो महकूम वो हाकिम हो गया, जो मतबू वो ताबे हो गया, जो मुक्तदा वो मुक्तदी हो गया। हम बज़ाहिर इमाम हैं लेकिन हमारे पीछे जो सबसे कमेटी का मेंबर सबसे आखिरी के सब में है ना, हम उसके भी पीछे हैं, उसके भी मुक्तदी हैं, उन्हें कैसा बोल रहा हूँ वैसा पढ़ाने का है, उन्हें जो बोल रहा हूँ वो करने का है। ये कैसा है तरीका, ये हम हक पर हैं इस मामले में, ये सोचना है हमको भाई से तालीम दीन होने की। तो मालूम ये हुआ कि हमारा ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी वाली बात है, हमारा निज़ाम ही थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो जिम्मेदारियों को भला क्या समझ सकते हैं, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये बेचारे क्या जाने दो रकात के इमाम बल्कि जो बोले तो ज़रा बेद भी तो करे उलमा की शान में, लेकिन उतना ज़्यादा गलत भी तो नहीं बोले ना अगर सोचे तो। अपन कौमों की इमामत जिसको करना है वो दो रकात की इमामत कर भी रहा है तो इस अंदाज़ में कर रहा है। तो इस वजह से हमें अपने मसरूफियत में, अपने जान व माल की तरतीब में, अपने माश की तरतीब में शायद थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी हालात के एतबार से। पहले की हालात के मुकाबले में अब थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, धीरे धीरे मदरसों का निज़ाम फ़र्क में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हालात किधर जा रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है। मसाजिद का निज़ाम, मदारिस का निज़ाम, हम उलमाए किराम का निज़ाम, उनके माश का निज़ाम, उनके अखराजात का निज़ाम, उनके कफाफ का निज़ाम, उनकी ज़रूरियात का जो निज़ाम है उसमें तब्दीली आ जाएगी। हालात इस तरफ उस रुख पर हैं तो समझदार आदमी पहले से ही सोचता है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों देखा ही गया है कि अगर हम दीन की मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं और इस अमूमी मेहनत में हाथ डाल देते हैं, अल्लाह का नाम लेके कूद जाते, तो फिर अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब ऐसे असबाब बना देता है कि हमारी आज़ादी में भी कोई खलल नहीं आता, दीगर मसरूफियतों में भी कोई खलल नहीं आता, पढ़ने पढ़ाने में भी कोई खलल नहीं आता, मसाजिद की जिम्मेदारियों में भी कोई खलल नहीं आता, माश में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़्यादा सहूलत भी हो जाती है। ऐसे इंतज़ाम होते हैं। जितना गैर डर रहा है अपने माश के मामले में उतना ही हम डर रहे हैं। जितना गैर को तनख्वाह की फिक्र है उतनी हमारे को है, जितनी उसके गैर को मुलाजिमत की फिक्र है गैर आलिम को उतने आलिम को भी है। तो जितना गैर आलिम जो है वो रिस्क के मामले में सबब के ऊपर टिक गया है, नज़र उसकी मुसब्बिब की बजाय सबब पर टिक गई है, बंध गई है सबब के साथ में, आलिम की भी बंध गई है। पहले ऐसा नहीं बंधी हुई होती थी, वो ईमान वाला होता था, साहिब मारिफत होता था, उसका जहन ऐसा टिका हुआ नहीं होता था कि भाई ये तनख्वाह नहीं रही तो मेरा क्या होगा। पालने वाला तो अल्लाह है, रब तो वो है और असबाब वो बनाता है, मुसब्बिबुल असबाब वो है। क्या सूरत होगी, क्या तदबीर करनी पड़ेगी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए असफार का निज़ाम बनाना चाहिए हमको, तकाजा है इस वक्त पूरी दुनिया में, ज़रूरत है हमारे सफ़र करने की। कैसा सफ़र करेंगे, हिम्मत कर लो आप, तय कर लो, मशवरे में रख दो मैं राज़ी हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है, 100, 200, 500 हज़ार रखे हुए थे होते हैं, बस ठीक है उसी में शुरू कर दो अल्लाह का नाम लेके। जब आदमी तरतीब बनाने में आ जाता है ना तो फिर वो बनती कुछ ऐसी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिस वक्त 85 में अमेरिका की जमात में गया था नईमुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह के साथ, उस जमात में नईमुल्ला खान साहब थे, कर्नल अमीरुद्दीन साहब थे, आबिद खान साहब थे, रहीमदाद खान थे, पूरे चौधरियाँ जो उस वक्त के हैं ना सब थे। मेरी तनख्वाह 250, दारुल हैदराबाद में उस वक्त मेरी तनख्वाह 250, जिसके जेब में 250 है, बीवी बच्चों का खर्चा सब है, उन्हें अमेरिका कैसे जाएंगे हम? साथी बोले तुम नाम तो लिखा दो, अंदरून बैरून जहाँ का तकाजा है नाम लिखा दो। मैंने कहा तकाजा में नाम लिखा, मशवरे में बात आई, नईमुल्ला खान साहब ने कहा आप इसमें जो है ना ये जमात में हम आपको शरीक कर लेते हैं। अब मसला ये था कि इंतज़ाम कैसा करना है, तो हमारे पास सोएगा थी, एक लोना से पहले सोएगा आती थी पतली गर्दन वाली, आप लोग देखे कि नहीं देखे, एक सोएगा पिटपिटी गाड़ी होती थी, एक सोएगा थी हमारे पास, वो आलमगिरी मस्जिद वाले दिलाए थे, मैं इमामत करता था, मैं वो सोएगा को बेचने का था, वो सोएगा को बेचे तो कितने पैसे आते, 1,500 रुपये कुछ आए थे उसके, 1,500 में अमेरिका जाते, मगर जा रहे साहब नाम भी लिखा कि क्या हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से शक्ल बन जाती है और आदमी के गुमान में भी नहीं होता। हुआ ये है कि जमात 19 की बनी, 19 अफराद, तो जो ट्रैवल एजेंट है उसके पास में जाके बात करे तो उन्हें वो अलग अलग रहते ना, तो डील लेते सबसे कि भाई तुम्हारी डील क्या है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या है। तो एक ट्रैवल एजेंट ये डील दिया कि अगर तुम 19 टिकट मेरे से लिए तो एक फ्री में देता हूँ। समझ गए आप उसके बाद क्या हुआ होगा, अंदाजा भी नहीं था। पूरा इनाम ज़ारे किसके नाम पे निकल सकता, जो सबसे ज़्यादा मिस्कीन होगा उसी के नाम पे निकलेगा। कफ़ारे के साह जो है ना, कफ़ारे के जो खजूरें वो भी उसी को मिल जाते हैं, खुद ही का कफ़ारा है, खुद ही को खजूर मिल गए, वो भी वसक 15 वसक पूरे। ऐसा होता है, अच्छा मस्जिद वाले मानूस हो गए, जमातों में असफार शुरू हो गए, मस्जिद में हम बोले भाई अपने से नमाज पढ़ाना नहीं होता, पाबंदी नहीं, नमाज पढ़ाना नहीं होता पाबंदी, हम रहते टप्पा चबूतरे में, पढ़ाना आलमगीरी में जाना, वहाँ पे ज़्यादातर क़याम जो है ना वहाँ मस्जिद में रहने लगा था हमारा, फजर के खातिर, ईशा और फजर के खातिर, भाई बाप मुझसे नहीं हो रहा ये, बल्कि बोले तो मस्जिद वाले क्या बोले, ऐसा करो आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, कौन सी तो भी नमाज को आ जाएगा और तनख्वाह वही रहेंगी बोली। वहाँ से भी 250 मिलने लगे थे, 250 कुछ ऐसे ही थे, 200-250 जो भी था उस ज़माने में, 200-250 अच्छे खासे थे वो, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 30-35 साल पहले की। खैर उसके बाद जो है ना नमाज को जाना एक किसी भी पूरे दिन में नमाज को जाना भी मुश्किल हो गया, तो मस्जिद वाले कमेटी से बात, कमेटी वाले आके घर को आके क्या बोले, ऐसा करो साहब आप बहुत अच्छा, आप लोग आए तो बहुत अच्छा रहता, लोग मानूस हैं, दिल लगता है, ये है वो है, आप ऐसे हमके ढमके बोलते ना, बस चढ़ा देते बस, तो ऐसा करो आप कि आप जुमा की नमाज पढ़ा दो, खाली जुमा पढ़ा दो, तनख्वाह वही रहेंगी, बोले रास्ता कैसा निकल रहा, देखो आप मौलवी को पूछो आप कि खाली जुमा पढ़ा के वही तनख्वाह, पूरी इमामत की वही तनख्वाह रही तो दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद फिर क्या हुआ मालूम, उसके बाद में फिर एक चक्कर चला, वो एक असफार शुरू हो गया अजला वगैरह के, इधर उधर इधर उधर, तो अजला में जुम्मा को भी कहाँ पहुँच पाता बंदा, समझ में आ रहा है, तो जुम्मा को जाना मुश्किल हो गया। तो मसला क्या, मस्जिद वालों को बोले भाई जुम्मा भी नहीं हो रहा हमसे, तो मस्जिद वाले घर को आए आके बोले ऐसा करो तुम लोग 4 भाई हैं, कौन सा तो भी एक भाई पढ़ा दो बोले, तनख्वाह तुम्हारे घर को आ जाएंगी बोले। आदमी को अंदाज़ा नहीं होता कि उसके जेब के उसका खर्चा रोटी पानी जो है ना उसकी कैसे कैसे उसके पास आ जाएगी, जमाने तक ऐसे चला, कौन से तो भी एक भाई जाके पढ़ाते। फिर उसके बाद फिर मैं हट गया, हजरत शाह साहब की लगा दी, बड़े शाह साहब बड़े भाई को हमारे, वही ज़्यादा फिर एक अरसे तक फिर वही खिताबत फरमाते रहे वहाँ, तो पहले मैं था वहाँ का इमाम, उसके बाद हजरत आए थे वहाँ। मेरे अपनी रुदा सुनाने का मकसद खुद कोई बड़ापन करने का नहीं है, अपनी कमज़ोरी जैसी कि वैसी आज भी वैसी ही है, सिर्फ बताना यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और जुरअत करने पर रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए जितने उलमाए किराम हैं, अइम्मा हैं, हुफ्फाज हैं, उनसे गुजारिश ये है कि ठीक है मस्जिद भी लगी हुई है, मदरसा भी लगा हुआ है, और हमें तालीम भी करने का है और इमामत भी करनी है, खिताबत भी करनी है, इमामत ना तो तालीम छोड़नी है। हज़रत जलालाबादी के पास मैं पहुँचा, आखिर की बात है, तो फरमाया एक बात याद रखो, किताब पढ़ाना मत छोड़ना, हज़रत ने नसीहत फरमाई किताब पढ़ाना मत छोड़ना। आज तक किताब पढ़ाना नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई किताब लगा लेकर रख लेते हैं। इस साल भी मेरे पास मिशकात भी थी, बुखारी भी थी, तो थोड़ी बहुत कोई किताब पढ़ाने का काम तो करना ही करना है, क्योंकि इल्म ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इल्म की खिदमत होना ज़रूरी है, और इमामत करना जो है ना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये कभी नहीं छोड़ने का है। हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास उलमा का जोड़ था, हुफ्फाज़ का जोड़ था, फैज़ुल उलूम में मैं भी था मौजूद। हज़रत के सामने एक साहब कहने लगे कि हज़रत इमामत छोड़ देना दिल बोल रहा, सब चुका इमाम का ही जोड़ता हूँ, इमामत छोड़ देना दिल बोल रहा। बोले भाई क्यों? बोले एक तो यह है कि मुसल्लियाँ बदतमीजी करते, दूसरे कमेटी वाले बदतमीजी करते, और तीसरे तनख्वाहें बहुत कम हैं, और चौथे छोटी छोटी बात पर मुआखजा करते। बोले ये 5 मिनट देर कैसा हो गई, ये लेट कैसा हो गया, आज फजर को नहीं आएगा, क्या बात है, अब उनको बोलना नहाने में देर हो गई, बल्कि समझ जाना ना भाई दिन नहीं आए, मौलाना साहब है कुछ वही छूंगा तभी नहीं आए। मरा लिया कि मसले हैं, तो बोले इस वजह से तबीयत चाहती है कि इमामत ही छोड़ देना, वो बस जिच हो गई तबीयत। बहुत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात फरमाई बहुत काबिल गौर है। हजरत ने फरमाया कि भाई इस ज़माने में तो पैसे दे के इमामत मिल जाए तो करना है, ये फरमाया बहुत कारी साहब का ये जुमला है। इस ज़माने में अगर पैसे दे के इमामत मिल जाए कि भाई मैं इतने पैसे देता हूँ मेरे को इमामत का चांस दो तो करना है, क्योंकि जो इमामत नहीं कर रहा उसकी नमाजों में, मौलवियों में जो इमामत कर रहा उसकी नमाजों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ है इसमें, अपनी नमाजों की हिफाजत है, अपनी जमात की हिफाजत है। अगर हम नमाज पढ़ाते नहीं हैं तो मस्जिद में कहाँ आते हैं हम 5 वक्त, कभी आते हैं कभी नहीं आते, और देर में आने का तो कुछ कहिए ही मत, 1 रकात होने के बाद आ रहे हैं, 2 रकात होने के बाद आ रहे हैं, तकबीर औला का तो एहतमाम ही नहीं रहता। अपने दीन का, अपने अमाल का जो तहफ्फुज़ है उसके वास्ते इमामत खिताबत बहुत ज़रूरी है, खिताबत भी ज़रूरी है क्योंकि वह दावत है। वो आपका एक सर्कल बनता है, कुछ लोग आपसे जान पहचानने वाले होते हैं, मानूस होते हैं, आपकी बात लेने वाले होते हैं, आपकी नसीहत को कबूल करते हैं, आपसे ही मसले पूछते हैं, उनको आपसे मुनासिबत हो जाती है सुनते सुनते। और एक जगह खिताबत करना, चंदा नहीं करना, यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, एक जगह करने से कुछ लोग आपके बाएतमाद बनते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों पर करते हैं, मुनासिबत पैदा हो जाती है, उससे बड़ा काम होता है। तो इसलिए खिताबत भी करनी है, इमामत भी करनी है, मदरसा भी करना है, पढ़ना पढ़ाना भी है, दावत का काम भी है, दीन की मेहनत भी है, सफ़र भी है, खुरूज भी है, दूर के लिए भी है, नज़दीक के लिए भी है, थोड़ी मुद्दत के लिए भी है, ज़्यादा मुद्दत के लिए भी है। अगर मैं तय कर लूँ कि मुझे ये करना है तो फिर होता है, और मैं ही अगर न चाहूँ तो बहाने हज़ार हैं। ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों भाई, ये सारे काम भी हमको करने ही करने हैं क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही काम हैं पूरे ये। उसके साथ साथ दावत की मेहनत जो है ना, इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसे अभी मौलाना बयान कर रहे थे, पूरी दुनिया में उमूमियत के साथ फितनों का एक सिलसिला है, सैलाब है फितनों का, और इतने प्रोफेशनल तरीके पर, यानी तालीमी लाइन से, जहानत की लाइन से, समझ की लाइन से फितनों में मुब्तला किया जा रहा है कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और उम्मत मुब्तला हो रही है उसमें, हमारी नस्लें मुब्तला हो रही हैं, मौलाना लोगों के बच्चे, हुफाज के बच्चे, दाई और तबलीग सबके बच्चे मुतासर हो रहे हैं, कैसे कैसे गेमों में लगाया जा रहा है। बज़ाहिर ये है कि हमारे फ़ोन में जो बच्चे गेम खेलते हैं या वैसे गेम के जो टॉयज आते हैं उसमें जो बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं तो ये बहुत मामूली चीज़ है समझते हैं, अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं एक एक गेम बनाने के वास्ते, वैसे इत्तेफाकन नहीं बन जा रही गेम, अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर, उसकी थीम मुकर्रर होती है, उसका यानी उसका थिंक टैंक है बाबा, एक ग्रुप है, और उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें पॉलिसी मुकर्रर होती है, और उसके जितने पार्ट्स होते हैं, जितने उसके हिस्से होते हैं काम के, उसमें उसके अंदर बादाबता हर एक की गरज मुकर्रर होती है। एक बात चलाना है कि दज्जाल का जहन बनाना है, दज्जाल आ रहा है उसका जहन बनाना है, लोगों को मानूस कर लेना है, तो ये जितनी सुपर ताकत के नाम से, सुपरमैन के नाम से बने हुए हैं ना गेम्स, उसमें इस थीम को दाखिल किया गया है। सुपरमैन के नाम से जितने गेम्स आ रहे हैं, दूसरे मरहले में एक आंख की गेम आ रही है, आप देखो, आप उसमें सामने वाले को तो एक आंख की, एक आदमी, एक आंख के आदमी की गेम है वो, लेकिन पीछे उसके ये है कि जिस वक्त दज्जाल आए तो इंसानों को दज्जाल कबूल करने में परेशानी नहीं होने का है, उनका दिल मानूस हो जाना है उसे, फिर उसमें हराम और नाजायज़ ताल्लुकात कैसे करना है, और कितनी देर तक, कितनी बार बच्चा देखता है किसी चीज़ को तो उसका तासुर लेता है, इस पे ध्यान काम होता है पूरा, कि कम अज़ कम ये जो हिस्सा है, ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये तेरा मर्तबा इसके सामने आना चाहिए एक गेम में। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको ऐसी, क्योंकि एक मरतबा, एक चीज़ 13 मरतबा जब आ जाती है आदमी के दिमाग में मुत्तसिलन करीब करीब के फासले से, तो वो क्लिक करना शुरू कर देती है। एडवर्टाइज में जो बार बार एडवर्टाइज आते हैं ना, मुख्तलिफ उसमें बार बार जो एडवर्टाइज आते रहते हैं सेम चीज़ के, उसका सीक्रेट ये जाना गया है, दिमाग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। सीधी तरफ के दिमाग का क्या काम है, बाईं तरफ के दिमाग का क्या काम है, हाफिज़े का क्या काम है, मुसव्विरा का क्या काम है, तो वो लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मौसीकी के ज़रिए से जो बात डाली जाती है वो बैठ जाती है। वो लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 13 मरतबा 14 मरतबा अगर किसी चीज़ को इंसान के सामने बार बार लाएंगे तो इंसान का जहन उधर मुतवज्जो हो जाता है। इस वजह से एडवर्टाइज के अंदर 13-14 मरतबा ज़रूर आएगी एक चीज़, ऐसे गेमों के अंदर भी है। तो फितनों का जो सिलसिला, मैं इस पर चल पड़ा, फितनों का जो इस वक्त मामला चल रहा है हमें अंदाज़ा नहीं, पूरी दुनिया की सतह पर फितने हैं, और किस औरतों के फितने, बच्चों के फितने, खेलकूद के फितने, بےدینی کے فتنے، بےایمانی کے فتنے، ارتداد کے فتنے، اسلام میں دین میں شک کے فتنے، یہاں تو خیر اللہ کا شکر ہے پھر بھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر حفاظ اور علماء کا مرتد ہونا عام ہو گیا ہے، شکاگو میں 10 سے اوپر ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں حفاظ علماء، کیونکہ اس کے بعد کیا کریں وہ لوگ، اس میں جا رہے ہیں کالجز میں جا رہے ہیں، کالج میں جانے کے بعد میں سب سے پہلا کام ان کو شک میں ڈالنے کا ہے، اور وہ شک کے بعد جیسے ہی بندہ تھوڑا سا شک میں آ جاتا ہے تو چارٹنگ میں اس کو باضابطہ اس کو فالو کر کے اس کو کچھ لوگ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ، پھر اس میں شک ڈالتے رہتے ہیں اور وہ شک اس کا ذہن قبول کر لیتا ہے۔ بالکل ہمارے قریب کے سرکل میں دو بچے، ایک بچہ حافظ اور عالم ہے، ایک بچہ خالی حافظ ہے، دونوں مرتد ہونے کی باتیں کرتے ہیں، کسی دوسرے ماحول میں نہیں رکھے ان کو، کسی دوسری صحبت، بس صرف یہ ہے کہ ان کو آن لائن کلاسز کرا رہے ہیں، کورسز ہو رہے ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ گیم ہے ان کے پاس اور انٹرنیٹ ہے ان کے پاس، ان کے فون میں، ان کے لیپ ٹاپ میں چیٹنگ کی سہولت ہے، پوری رات چیٹنگ ہوتی رہتی ہے، فجر کی نماز کے وقت سوتے ہیں تو جو فجر کی نماز کے وقت سوئے گا تو فجر کہاں سے پڑھتا ہے، پھر اٹھتے کب ہیں، ظہر کے بعد، کھانا نہ پانی، کام نہ کاج، اسلام میں شک، انہیں مرتد ہونے کی باتیں کر رہا بول کے ہم کو کیسے معلوم ہوا، ایک تیسرے بچے کو جو ہمارے قریب کے سرکل کا ہے انہیں شک والی باتیں کرنا شروع کرا اس کے ساتھ میسج میں، تو انہیں ہم کو بتایا کہ یہ تو ایسی باتیں لکھ رہا ہے، تب اس سے بات کی گئی تو انہیں بولا تھا میرے کو تو اللہ میں بھی شک ہے، رسول میں بھی شک ہے، دین میں بھی شک ہے، آپ ہی بہت فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ ہی بچائے، ضروری نہیں ہے اگر ہم مدرسے میں رہیں گے تو بچ جائیں گے، اگر ہم مسجد میں رہیں گے تو بچ جائیں گے، ضروری ہمارے بچے بچ جائیں گے، اور امت کا جو دیگر امت کا حال ہوگا آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا، امت کے دیگر طبقات کا حال کیا ہوگا، وہ کہاں ہوں گے اس وقت، اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے۔ مرتد ہونے کا ایک سلسلہ ہے، مرتدین کا ایک سلسلہ ہے، کیا مسئلہ ہے اگر کہیں مرتد ہو رہے ہوں تو عالم کی کیا ذمہ داری ہے، خاموش بڑھ جانے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو کہ سرکار اگر ہوتے تو کیا کرتے، کہیں کوئی مرتد ہو رہا بلکہ معلوم ہو جاتا تو خاموش ہو جاتے کیا، تو پھر ہم کیسے خاموش ہو سکتے، دین سے بے دوری کی، دین سے دوری کے اندر بھی، بے دینی کے اندر بھی خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، اور مرتد ہونے میں تو خاموش رہنے کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے سفر ہمارے لیے ضروری ہے، سفر کا ارادہ فرمائیں اور جتنی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ دے وہاں سے شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ ہمت آپ بڑھاتے جائیں گے اللہ پاک راستے بھی کھلتے جائیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری نیت اور ہماری ہمت کا ہی مسئلہ ہے پورا، ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو، اپنی ہمت بڑی رکھو اللہ کی نظر میں بھی اور مخلوق کی نظر میں بھی، تمہاری حیثیت تمہاری ہمت کے اعتبار سے ہے، عزم کے اعتبار سے ہے، حوصلے کے اعتبار سے ہے، ارادے کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ یہ عزم اور نیت کر رہا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کر رہا ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ کروں گا، انما الاعمال بالنیات کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تم اللہ سے جو نیت باندھو گی اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی کام لے گا، اگر آپ یہ طے کریں اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ مجھ سے کام لے، میں کرنے کو تیار ہوں، دعا بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک لے گا، پوری دنیا پھرنے کو آپ تیار ہیں تو اللہ پوری دنیا پھرائے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، ان کی قدرت میں کوئی قید ہے، کوئی شرط لگی ہوئی ہے، کوئی کنڈیشن ہے، کچھ بھی نہیں، قادر مطلق ہے، وہ جب چاہیں، وہ جو چاہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں، وہ جیسا چاہے کرے، قادر مطلق ہونے کا تو مطلب ہی ہے، ہم غریبوں کے ساتھ، ہم ناقصوں کے ساتھ، ہم کم علموں کے ساتھ، ہم گنہگاروں کے ساتھ، ہم کتنی بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم کو ہی پتہ ہے، ہم کتنی کمزوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہمیں ہی پتہ ہے، ہم دینی مدرسے سے فارغ ہو گئے، ہماری وضاحت، ہماری شکل صورت مولویوں جیسی ہو گئی، لیکن ہم کیا کیا عادتیں لے کے گروتھ ہوئے، بڑے ہوئے، ہمیں ہی معلوم ہے کس کس کیفیتوں کے ساتھ میں ہم ہیں، وہ تو نہیں جاتے نا اتنی آسانی سے، وہ تو اپنے کو چھپا کے رکھ لینے کا ہے، ہم چھپا کے چلاتے رہتے گاڑیوں سے، اس کے باوجود اگر ہم نیت صحیح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھولے گا، میرے دوست جتنی جیسی نیت کرتا ہے بندہ اللہ پاک اس سے ویسا کام لیتا ہے، اگر ہم اللہ سے یہ نیت کریں کہ اللہ ऐसा काम ले लीजिए, पूरी दुनिया की हिदायत का काम ले लीजिए, दुनिया की क़ियादत का काम ले लीजिए, दुनिया की इमामत का काम ले लीजिए। हम तो गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, लेकिन हमारा जज्ब, हमारी जान हाजिर है, हमारा माल हाजिर है, हमें कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे मेरे दोस्तों काम लेंगे, आप हैरत करेंगे कि आलिम नहीं, फाजिल नहीं, शेख नहीं, मुहद्दिस नहीं, मुफस्सिर नहीं, दुनियादार, दुनियावी तालीम याफ्ता, कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, कोई आईटी का बंदा है, अपने अपने इलाकों में गए, अपने बचपन में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जमात में लगे हुए थे, वहाँ जाके उन्होंने काम को करना शुरू कर दिया, काम संभाल लिया, एक 25-30 साल का वक्फा गुजरा उनकी मेहनत को, आप हैरत करेंगे कि उनके ज़रिए से हज़ारों बंदगाने खुदा को तौबा की तौफीक हो गई, वो आदमी ज़रिया बन गया हिदायत का, हज़ारों लोगों की मस्जिदें बन गई, मदरसे बन गए, हुफाज तैयार हो गए, उलमा तैयार हो गए, और सबब कौन है? सबब एक इंजीनियर साहब है, सबब एक डॉक्टर साहब है, सबब एक कंप्यूटर का बंदा है, सबब एक बिजनेसमैन है। तो अगर उलमाए किराम मेरे दोस्तों होंगे तो आप अंदाज़ा फरमाइए कि फिर इस हिदायत को आप कितने से मल्टीपल कर सकते हैं, उसकी फहम, उसकी अकल, उसकी दानिश, उसकी हिकमत, उसका सलीका, उसकी तरफ लोगों की तवज्जो, लोगों का रुझू किस अंदाज में होता है फिर। इसलिए हक ताला शानहु कबूल फरमाने पर है और अल्लाह से कबूल करवाना है, नियत हमें करनी है। तो इसलिए बात ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है, तो वो भी की काफ़ी बात, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हम अपनी तरतीब कुछ ना कुछ बना लें अल्लाह के ऊपर भरोसा करके। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझ पर भरोसा करो, वतवक्कल अल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे भरोसा करो जो मरता नहीं है, उस जिंदा पे भरोसा करो जो मरता नहीं है। कितना सख्त, कितना वो लहजा है, आप इस लहजे पे गौर कीजिए आप कि ये लहजा क्या कह रहा है हमसे। अलैहिस्सलाम बिकाफी नाबदा, कितना अजीब लहजा है, क्या अल्लाह अपने बंदे को बस नहीं है? कौन है फिर बस, ये पूछना चाह रहे हैं अल्लाह पर। अगर अल्लाह तुझे बस नहीं है तो फिर कौन बस है तुझे? हमें ये तवक्कल अल्लाह पर हस्बुक, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसको काफ़ी होता है। तो अल्लाह की रुबूबियत का यकीन, अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न, अल्लाह के साथ अच्छी नीयत, और हमारा अल्लाह के साथ खलूस, इखलास, महज उनकी रजा जोई के वास्ते, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में उनसे रिश्ते की वजह से, उनसे ताल्लुक़ की वजह से, उनसे नस्बत की वजह से, उनकी उलूम से नस्बत की वजह से, उनकी विरासत से नस्बत की वजह से, मुझे तो करना पड़ेगा ये काम। इसलिए हम तय करें कि इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के रास्ते में जाने का इरादा करते हैं, सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो नाम लिख लेते हैं। रमज़ान का भी मुबारक महीना है, बहुत से साथी नहीं सुना रहे हैं, बहुत से 3 पारे सुना रहे हैं तो 10 दिन में फारिग हो जाएंगे, बहुत से हाफिज़ नहीं हैं, खाली आलिम हैं, मदरसों को भी छुट्टी है, साल भर भी छुट्टी थी, अब ऑनलाइन का सिस्टम ज़रा ऐसे ही है, तो है हमारे पास टाइम है, हम जा सकते हैं, मैनेज हो सकता है। तो इस वजह से अगर रमज़ान में चाहो तो रमज़ान में ही तय कर लो, और रमज़ान में ना ही हो सकता तो रमज़ान के बाद कर लो। मदरसा शुरू होने को टाइम लगता है, मदरसा होने होने तक भी अपना चिल्ला हो जा सकता है, जैसे सहूलत हो, बहरहाल तय सबको करना है मेरे दोस्त। चलो हिम्मत करके अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करके नाम बताते जाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए, बरकत फरमाए। माशाल्लाह, दूसरे साल के लिए मौलाना तैयार है, बताओ भाई, साल साल भर के लिए भी इरादे करो मोहम्मद आसिम चिल्ले के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए, अल्लाह मुबारक फरमाए, अल्लाह ताला सहूलतें मैसर फरमाए। करो हिम्मत करो दोस्तों, देखो नियत अल्लाह पाक से की जाती है और इजहार किया जाता है, उसका दुआ भी उनसे की जाती है, कोशिश की जाती है, बस ये 4 ही काम होते हैं बंदे को करने के। उसके बाद तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही ये है कि तू एक बालिश भर, मैं एक हाथ बढ़ता हूँ, तो एक हाथ बढ़ा तो मैं 2 हाथ बढ़ता हूँ, तो चल कर आएगा तो मैं दौड़ कर आऊँगा। क्या नाम है हजरत का? हाफिज अयाज साहब, माशाल्लाह, हाफिज़ गुलाम मोहम्मद साहब के साहिबजादे हैं, हाफिज़ गुलाम मोहम्मद साहब इन इनके वालिद साहब हमारे उस्ताद हैं, थोड़े दिन हम हिफ्ज़ करें इनके अब्बा के पास गांव में मुगल गिद्दे में। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, सना कुछ बीमार कमज़ोर चल रहे हैं। आप लोगों का एक का नाम जो है ना, एक नहीं है, बहुत बहुत कुछ होता है, पूरी जमात होती है, पूरा मजमू होता है। इन्ना इब्राहिम का ना उम्मा, इब्राहिम अकेले उम्मत थे, इन्ना इब्राहिम खाना उम्मा, वो पूरे अकेले उम्मत थे, वो आलिम जो है ना वो उम्मत है, मजमुआ होता है। उसके असरात भी वैसे ही हैं, उसका फैज वैसा होता है, इफादे इस्तिफारे का दायरा वैसा होता है। जो साथी जिस हलके में रहते हैं मेरे भाई, ये जो दावत वाले साथी हैं, थोड़ा इनका साथ दे देना, इनके साथ बैठ जाना, इनके मशवरे में शरीक हो जाना, बगैर इस इंतज़ार के कि वो हमारा बयान रखाएं। बयान की उम्मीद इनसे नहीं रखना, वो कब वो बयान रखाते हैं उनकी अपनी एक वो है, उनके दिमाग में आना पड़ता है, जैसे बच्चे के जहन में नहीं आ रहा ना, वैसे उन लोगों के जहन में नहीं आता। तो मगर यह है कि उनकी सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है, उनके साथ बैठ जाना, मशवरे में शरीक होना, उनकी रहबरी करना। और इस वक्त जो गुज़िश्ता एक साल से जो हालात आए, ख़ासतौर पर तबलीग पर, पूरे मुल्क में जो है ना, वो करोना एक ही जमात पे आया था, पता ही है आप लोगों को, किसी पे नहीं आया था, हालांकि मरे बेहिसाब, लेकिन आया था इनको। तो उसमें फिर परेशानी भी हुई, हालात भी आए, और जन वाला डराया भी गया इनको, अपने उसकी तरफ से भी, दूसरों की तरफ से भी, फिर सुस्त भी पड़ गए कोई, फिर मजबूरी पेश आ गई, नहीं जा सकते थे, नहीं आ सकते थे। जब आदमी कोई काम छोड़ के बैठा रहता है ना, तो उसको बैठे रहने की आदत हो जाती है, नहीं कर रहा होता है कोई काम तो नहीं करने की आदत हो जाती है। अपने अपने हलके में जो दावत के जो पुराने साथी हैं, चार महीने लगाए हुए, चिल्ले लगाए हुए, आप हजरात ये काम कीजिए कि उनसे मुलाकात करके उनको फिर उठा दीजिए, ज़रा सा उनको हरकत में लाना है, उनसे जाके मिलना है। भाई तुम लोग काम कर रहे हो, बल्कि हम लोग आराम से बैठे हुए थे, तुम लोग बैठे, हमारी तो मुसीबत पड़ जाएगी बोले। इसलिए अगर हम जाके मिल लेंगे, उलमाए किराम अगर पहुंच जाएंगे ना ये 4 महीने वालों के पास, 40 दिन वालों के पास, जो इस वक्त जुरत नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, मुजमहिल हो गए हैं, तबीयत में थोड़ा सा वो ठहरा हुआ आ गया, जुमूद आ गया, थोड़ा सा इनसे मुलाकात की शक्लें हो जाएँ, और इनको तहरीक थोड़ा सा आमादा करना, तरगीब देना, तशजीह करना। अगर ये हो गया मेरे दोस्तों, तो इंशाअल्लाह ताला जो साथी किसी भी तरह की कमज़ोरी में है, वो दूर हो जाएगी उनकी वो कमज़ोरी, और ये बहुत बड़ा काम होगा। और हम अगर जाते हैं और हमारे से मुलाकात की कोई शक्ल उनसे हो जाती है, चाहे बुला के हो, दावत पे हो, टी पार्टी पे हो, किसी भी चाय के उनवान पे बुला लिया जाए, या खुद पहुंच जाए, जो भी शक्ल हो, तो फिर उससे इंशाअल्लाह ताला काम में बड़ी तकवियत होगी। और उनको उस वक्त अंदाज़ा होगा कि अरे हम समझ रहे थे कि ये लोग जमात के नहीं हैं, ये तो हम अगर बैठ गए तो उठाने को आ गए, हमारे पर नज़र थी इन लोगों की, मालूम हुआ कि ये लोग दिल से कितना हमारे साथ हैं और हमारी कितनी ज़्यादा हमदर्द हैं, कि हमारे बैठने की वजह से उनको फिक्र हो गई है। तो एक एतमाद भी इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा, कायम होगा। तो एक छोटा सा ये काम कर लेना है कि अपने अपने इलाके हलके में जो मस्जिदवार जमात होती है, उसमें शिरकत कर लेके उनसे ये मालूम कर लिया जाए कि भाई अगर हम तैयार हैं, अगर आप कुछ साथियों के पास मुलाकात करने के लिए हमें ले जाना चाहें, जो साथी पुराने अपने काम करने वाले हैं, 4-4 महीने वक्त लगाए हुए, 40-40 दिन लगाए हुए हैं, अगर उनसे मुलाकात करने के लिए आप हमें लेके चलना चाहते हैं, तो हम चलने को तैयार हैं, उनसे मिल लेंगे, इधर मिजाज कुर्सी भी कर लिए जैसा हो जाता, थोड़ा उनको हिम्मत दिला दिए जैसा हो जाता, और हमारा मिलना ही खुद उनको हिम्मत दिलाना है, कर लेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله
करना।